हाँ, तो अंबेडकर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है मंडोर में, तो वहाँ पे हमारा एडमिशन हो गया था। 7 से 12 तक मैंने वहीं किया था, और जब 11 12 में था तब क्या है कि एनएलयू जोधपुर जो है हमारे जो एकदम स्कूल थी अंबेडकर उसके जस्ट पास में, एकदम बाउंड्री
अच्छा
सेम बाउंड्री है, तो वहाँ से कुछ लोग आते थे हम, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल था और वहाँ पे इंग्लिश वगैरह थोड़ी वीक थी लोगों की, मतलब आता ही नहीं था कुछ भी ना, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत वही है, तो वहाँ से कुछ लोग आते थे पढ़ाने वगैरह ऐसे ही, है ना, हेल्प करने के लिए लोगों को इंग्लिश पढ़ाने, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने, तो वहाँ से कुछ लोग आते थे। तो उनमें से कुछ लोग जो थे वो IDIA के वॉलेंटियर थे, तो उन लोगों ने हमको थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, जब हमको पढ़ा रहे थे ये इंग्लिश थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद हम लोगों को उसने उन्होंने बताया था कि IDIA नाम का एक
कब की बात हो
ट्रस्ट
गई,
है, टू
2012
थाउजेंड
13
फोर्टीन फिफ्टीन
सॉरी 14
फोर्टीन फिफ्टीन के,
ठीक है।
तो उस समय वो लोग आते थे पढ़ाते थे, फिर उन्होंने IDIA से इंट्रोड्यूस कराया था, थोड़ा बहुत बताया था कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट है जो लॉ करना चाहते हैं उनको पढ़ाना, मतलब उनको सपोर्ट करते फाइनेंशियली सोशली इकोनॉमिकली सारा, है ना। तो वहाँ से थोड़ा आइडिया आया था, तब तक तो हमारा माइंड बन चुका था कि जैसे हर एक पूछोगे आप कोई भी व्यक्ति
क्या
को
होना
कि 10th के बाद क्या करना है, तो हम बोलेंगे कि हमको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर
है।
बनना है, तो
हाँ
उसके हिसाब से सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, है ना, 10th के बाद। तो उस समय तक हमारा डिसाइड हो गया था कि हमको तो बायोलॉजी लेना है, पढ़ना है ना, और डॉक्टर बनना है, घर वालों ने भी बोला कि डॉक्टर बन जाओ। बट जब ये लोग आए, 12th हमने कर लिया था, है ना, बायो में मेरा 12th हो गया था, 77% बने थे मेरे 12th में। तो उसके बाद फिर बोला था कि ये तुमको कोचिंग वगैरह दिलाएंगे, क्लैट वगैरह ये सब सब खर्चा ये उठा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है एक बार ये ट्राई करते हैं, क्योंकि मेडिकल में मेरा इतना मन नहीं था जाने का, मैंने कहा सोशल से मतलब सामाजिक काम
सेवा,
करना है,
हाँ
समाज सेवा का काम करना है, तो मतलब बायो में मेरे को मतलब मेडिकल फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद फिर हुआ ये कि मैंने IDIA का एक INET का टेस्ट होता है, जो जब ट्रेनी इंडक्ट करते हैं नए लोगों को उस समय वो INET का टेस्ट लेते हैं, तो वो दिलाया काफी लोगों को, 20-25 लोगों को दिलाया, उनमें से फिर 3 लोगों को इंटरव्यू, 3-4 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो तीन उन और एक मेरा फ्रेंड है वो भी मेरा बैचमेट ही था वहाँ पे, तो हम 3 लोगों ने दिया इंटरव्यू वगैरह, हम सेलेक्ट हो गए। तो उनमें से एक तो एक के घर वालों ने मना कर दिया कि तुम
ऐसा ये
लॉ नहीं
नहीं
करोगे और तुम ये मेडिकल फील्ड में जाओगे, तो फिर हम 2 लोग बचे पीछे, तो 2 लोगों ने फिर 2 लोगों को उन्होंने हमको एक लॉ प्रेप करके कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जोधपुर में, सागर जोशी उसका डायरेक्टर है, तो उनसे कांटेक्ट करवाया, फिर हमारा वहाँ पे एडमिशन करा दिया। तो एक्चुअली इसमें दिक्कत ये थी कि 0 इंग्लिश थी हमारी, कुछ आता नहीं था, है ना, ग्रामर वगैरह कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं जाता था कि इंग्लिश इतना, क्योंकि सरकारी स्कूल है और इंग्लिश हिंदी मीडियम था, तो इंग्लिश का इतना कुछ था नहीं। तो फिर पहले 1-2 महीने तो बहुत स्ट्रगल किया कोचिंग में, मतलब 15-15 16-16 घंटा पढ़ना पड़ता था दिन में, ट्रैवलिंग करना पड़ता, जैसे हम एक जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में उनका कोचिंग था, हम 6-7 किलोमीटर दूर रहते थे हॉस्टल में, और फिर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से मंडोर जा 15 से 20 किलोमीटर है, तो हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग जाके फिर वहाँ पे 2-3 घंटे पढ़ते, फिर वहाँ से सीधे चले जाते NLU जोधपुर आते पढ़ने के लिए।
ओ, इतना टाइम
हाँ
लग
मतलब पढ़ने के लिए आते थे हम लोग, वहाँ बस से ट्रेवल होता था सारा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ पे पढ़ा थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, और वहाँ के जो लोग थे NLU के वो IDIA के वॉलेंटियर बहुत सपोर्टिव थे, मतलब तुमको जो चीज़ चाहिए वो खुद की जेब से पैसा लगा के हमको ट्रैवलिंग के चार्जेस देते थे, हमको वाईफाई का कनेक्शन दिलाया था हम लोगों ने, है ना, तो मतलब फोन में रिचार्ज वगैरह करने का, क्योंकि इतना ऐसे मतलब हमारे पास थे नहीं इतने रिसोर्सेज, तो उस समय वो सारी हेल्प कर रहे थे। तो एक फ्रेंड था हर्ष, जो हर्ष कुमार हर्ष करके, वो बिहार से था, और एक मुकुल कृष्ण व्यास थे, और बहुत सारे लोग थे जो IDIA में, कार्तवी सासा चांदनी सा, और तो बहुत सारे लोगों ने मतलब हेल्प किया हमको, इंग्लिश वगैरह पढ़ाया, है ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आने लगा था, समझ में आने लगा था, मतलब हमको भी मेहनत करना पड़ा। तो 17-17, 18-18 घंटे पढ़ते थे एक दिन के, ताकि कुछ तो समझ में आए क्या चल रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम से आप एक दिन से
वो बहुत बड़ा चैलेंज
होता है। हाँ, तो फिर एडमिशन हो गया, पढ़ाई शुरू कर दी हमने, समझना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, 4-5 महीने बाद थोड़ा बहुत समझने लगे। तो फिर क्लैट दिया उसके बाद 2016 में 15 में 2016 में। हाँ, मतलब 16 में एडमिशन हो गया था हमारा, है ना, 15 में मतलब मई में हुआ था, 16 मई में हुआ था हमारा जो क्लैट था, उसके आसपास हुआ था, अभी एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है मेरे को। तो उस समय फिर क्लैट दिया, पहले लिस्ट में तो नाम आया नहीं हमारा, दूसरी लिस्ट में तमिलनाडु जो लॉ NLU है वो मिला था, तिरुचिरापल्ली में वो मिला था। फिर उसके बाद वेट किया हमने, था फोर्थ लिस्ट तक आते आते मेरा जो एडमिशन है NLU उड़ीसा में हो गया था।
अच्छा
ना, फोर्थ लिस्ट में फिर NLU उड़ीसा से मैंने लॉ किया। तो चैलेंजेस एक्चुअली में बहुत सारे थे शुरुआत में, क्योंकि हिंदी मीडियम से आ रहे हो और वो भी लॉ बहुत टफ होता है, इंग्लिश में पढ़ने वाले जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनके लिए भी टफ होता है लॉ, है ना। तो लॉ एक तो ही बहुत बड़ा चैलेंज था कि इंग्लिश सीखना अच्छे से, ठीक है क्लैट के समय तक तो नॉर्मल इंग्लिश से
चल गया
ना, जनरल इतना टफ नहीं था इंग्लिश। फिर उसके बाद भी बहुत मेहनत करना पड़ा था, है ना। तो वहाँ पे जैसे हम NLU में एडमिशन हो जाता है कोई ट्रेनी का, तो वो स्कॉलर बन जाता है,
आइडिया स्कॉलर।
हाँ, ट्रेनी होता है जब तक वो क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और क्लैट देता है, उस समय तक वो ट्रेनी होता है, और जैसे ही उसका सिलेक्शन हो जाता है, NLU मिल जाता है, तो वो स्कॉलर बन जाता है। तो जब मैं उस समय स्कॉलर बन गया था IDA का, तो IDA स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए हर एक लॉ इंस्टीट्यूशन जो NLU है उनमें टीम होती है।
अच्छा, सिर्फ उन्हीं को तो वॉलंटियर।
हाँ, सपोर्ट करते हैं, वॉलंटियर की टीम होती है, उसमें एक लीडर होता है, डेप्यूटी टीम लीडर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के मेंटर्स होते हैं,
बच्चे खो ना जाए, मतलब
खो ना जाए, हाँ मतलब कि तुम उनको सपोर्ट करो, क्योंकि इनकी जो है कल्चरल पूरा एकदम से डिफरेंट होता है। तो सोशल मेंटर्स होते हैं और एकेडमिक मेंटर्स होते हैं वहाँ पे, है ना। उसके बाद थर्ड ईयर के अबव जाते हो तो आपको प्रोफेशनल मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो पहला सेमेस्टर इतना मतलब खराब गया था, क्योंकि इतना प्रेशर था कि भाई फेल ना हो जाए, फेल हो गए तो फिर IDA वो क्या आंसर देंगे हम लोग, घर वालों को क्या आंसर देंगे, तो बहुत प्रेशर था उस समय, बहुत पढ़ना पड़ता था, कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करने का मन नहीं करता था, क्योंकि डर था एक मन में कि यार फेल हो जाएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा नया है, सारा इंग्लिश में लॉ पढ़ने को मिल रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे उस समय इंग्लिश से रिलेटेड। फिर उससे पहले जब एडमिशन हुआ तो लोन लेके हम गए थे वहाँ पे, किराया भी नहीं था हम लोगों को।
अच्छा, वो
जब NLU, हाँ 30,000 का लोन लिया था हम लोगों ने, लोन लेके हम कॉलेज गए थे, तो मेरे जीजा जी वो मेरे साथ चले थे वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो कॉलेज में गए, पहला सेमेस्टर तो इतना मतलब खराब था, क्योंकि डर था और कुछ कर नहीं पा रहे थे, इंग्लिश तो एकदम भारी सब्जेक्ट लग रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लॉ पढ़ रहा था, और फिर जो हमने 12th तक पढ़ा था वो कोई काम का नहीं था, क्योंकि हमने बायो से किया था, और फिर एकदम से फील्ड चेंज कर रहे हो आप, तो पूरा डिफरेंट है। तो वो भी एक चैलेंज था, वो भी चैलेंज था कि मैंने कभी इंग्लिश तो पढ़ी नहीं थी, सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा था इंग्लिश में, इतने वो मतलब अपडेटेड भी नहीं रहते थे उस समय तक, क्योंकि बच्चे होते हैं और उतना वो ध्यान नहीं रहता है, खेलने कूदने में समय निकल जाता है। तो बहुत चैलेंज थे ये इंग्लिश का, फिर कल्चर जो होता है NLU का एकदम शॉक था कि एक दो महीने तक तो आपको पता ही नहीं चल रहा है
क्या चल रहा है कॉलेज। तो सम्मान को पहली बार कब मिले?
सम्मान को थर्ड ईयर में मिला था, मैं सम्मान को दिल्ली में मिला था, वो भी है, और उससे पहले एक शायद मैं बैंगलोर में मिला था, मैं इंटर्नशिप करने आया था ट्री ऑफ लाइफ एसोसिएट, एक ऑर्गेनाइजेशन है मतलब लॉ फर्म है वहाँ पे, वो सम्नाथ के फ्रेंड्स है, तो मेरी बात हुई थी और इंटर्नशिप सम्नाथ ने मेरे को बोला कि तुम यहाँ करो, ये मेरे मित्र है वगैरह। तो पहली बार तो सम्नाथ एक लेक्चर ले रहे थे लॉ एंड स्टोरी टेलिंग पे, है ना,
मैंने देखा वो YouTube
पे। हाँ, YouTube पे पढ़ाया हो तो उसमें
मैं आज सुबह ही देखा मैंने,
तो वो ज्वाइन किया था मैंने, सम्नाथ ने बुलाया था,
शायद चंद्रचूड़ भी थे उसमें,
नहीं चंद्रचूड़ वो वहाँ पे थे, वो दिल्ली वाला था, आपने जो देखा था लॉ एंड स्टोरी टेलिंग वाला, वो थीम वहीं से आया था कि एक ब्रीफ इंट्रो यहाँ देते हैं, फिर बड़ा जो होगा वो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस था वो वहाँ हुआ था दिल्ली में, जावेद अख्तर साहब, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो मैं भी वही वाला सुन रहा
हूँ। तो वहाँ पे मिला था पहली बार समनाथ से, तो लाइक उसके पास जाते ही वो अलग से वाइब आता है एकदम से, कि वो एकदम से फीलिंग आता है कि यार कितना मतलब बंदा है, कितना कुछ किया है हम लोगों के लिए, है ना। तो मतलब नहीं जानते थे फिर भी एक मतलब गार्जियन की तरह फील हो रहा था कि ये हमारा गार्जियन है, फादर की फादर लाइक फिगर है। हाँ, तो फादर फिगर है हमारे लिए। तो वहाँ से मतलब फिर जब भी मिलते थे तो एक चीज तो हमेशा बोलते थे, वो अपने यहाँ पे हाथ रखते थे बैग पर, बोलते थे कि तुम्हारे पेट में जो आग है ना वो बुझनी नहीं चाहिए।
अच्छा।
इसको कंटिन्यू रखो। तो वहाँ मिले थे पहली बार, हमने लंच किया था साथ में, खाना वाना खाया था। तो वो इस तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को, है ना। एक इंसिडेंट मेरे को याद है, जब क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आईडिया स्कॉलर है और मैं भी आईडिया स्कॉलर, हम दोनों उसी कॉलेज में थे। तो कुछ बुलिंग हुआ था हमारे साथ, नए स्कॉलर जब आते थे रैगिंग वगैरह होता है ना, लोग आते हैं तो उस समय हमारे साथ बुलिंग हुआ था उस समय। तो समना सर ने तुरंत ही लाइक, उनको ये सब सहन नहीं होता है कि बुलिंग करता है कोई सीनियर जूनियर का।
अच्छा,
तो बिल्कुल सहन नहीं होता उनसे। तो तुरंत उन्होंने फोन लगाया वीसी को, हमारे फोन लगाया, मेल भेजा, फिर जस्टिस रूमा पॉल को आप जानते हैं, वो वन ऑफ द ट्रस्टी है, तो उनको सीसी किया, सीसी को भी सीसी किया, एमपी सिंह को भी सीसी किया, सब लोगों को बताया इस इंसिडेंट के बारे में, फिर जांच वगैरह बैठी थी उसके बारे में। तो मतलब ये ऐसी जो इंसिडेंट है उनको कभी सहन नहीं करते थे कि ऐसा हरकत जो होती थी, कि भाई किसी भी हालत में स्कॉलर के साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं स्कॉलर्स, है ना, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और उसके बाद भी यहाँ के तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दो, उसके बाद तुम्हारा जो एलिट इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारा जो कल्चर है पूरा डिफरेंट है, उनमें सेट जो सेटल होने में, एडजस्ट होने में, अडॉप्ट करने में भी समय लगता है।
क्या है ऐसी, एक तो ये समझ में आया कि ये आइडिया स्कॉलर आप बन गए, तो फिर एक को ना डायरेक्शन मिल गया, फिर अपना चलने लगा। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि जब आप मिलते थे शमना से तो फादर फिगर टाइप की फीलिंग आती थी, तो क्या ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने आपको इतना इंस्पायर कर दिया कि आप इस रास्ते पे चल ही रहे हो, मतलब आप कुछ और भी कर सकते हो?
हाँ, लेकिन मेरे शुरू से थोड़ा बहुत था कि समाज सेवा करना है, लेकिन जो चिंगारी जो मिली थी ना, वो चिंगारी समनाथ से मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि समनाथ के बारे में जानता नहीं था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, मेरे को पता है कि आईडिया इंस्टीट्यूशन है, इसका हेड ये, लेकिन उसके अलावा मेरे को ज़्यादा पता नहीं था। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, इनके ब्लॉग जो इनका पेपर्स है ना, वो पढ़ना शुरू किया, इनके काम को देखना शुरू किया, तब समझ में आया था कि लाइक जो काम ये कर रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। जो हमने खुद ने फील किया है लॉ कॉलेज में रहते हुए कि ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोग जो इतनी एलिट इंस्टीट्यूशन है उनमें देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो जो डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था, इंक्लूजन का जो उनका आइडिया था, है ना, वहाँ से थोड़ा बहुत चिंगारी जगी थी कि क्यों जरूरत है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव आने चाहिए। क्योंकि लॉ कॉलेज में अगर आप देखोगे तो एस सी बैकग्राउंड के लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो भी ऐसे बैकग्राउंड से मिलेंगे कि वो थोड़ा प्रिविलेज है, कंपैरेटिवली प्रिविलेज है, कंपैरेटिवली प्रिविलेज है। और जो ग्राउंड से उठाकर लोगों को तुम लॉ में डाल रहे हो, तो वो जो उनका पर्सपेक्टिव होगा, उनका जो एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने जो फेस किया है, वो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि पैसा भी एक रोल प्ले करता है कि आपके जो सोशल स्टेटस है उनमें कि किस तरीके से लोग आपके साथ बिहेव करें। तो वहीं से वो चिंगारी मिली थी कि डाइवर्सिटी कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जिस अगर हम एक इंसिडेंट और था, जब हमने हिंदी में मूव कोर्ट कंपटीशन का एक हुआ था एनएल नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद मैंने किया वो, और उसके बाद उन्होंने हिंदी का मूव कोर्ट है वो बंद ही कर दिया पूरा कॉलेज में। क्योंकि अब देख रहे हो ना कि कितना प्रिविलेज है कि हिंदी वाले लोगों को आप कॉम्पिटिशन में जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, है ना, कि सिर्फ इंग्लिश में अलाउ करें, क्योंकि यहाँ पे सारे इंग्लिश के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होगा जो रीजनल लैंग्वेज में करना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज देखोगे तो ज़्यादातर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ग्राउंड लेवल पे तो नहीं चलेगा ना। तो वो जरूरी है ना सबसे ज़्यादा कि आप हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करो साथ साथ। तो वो कॉन्सेप्ट था नहीं वहाँ पे, है अभी भी नहीं है, अभी भी बंद है। तो मतलब बेसिक आइडिया ये है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव लाया जाए कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम अपने पर्सपेक्टिव बताओ। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो एलिट है बहुत, उनको सोशल रियलिटी से
नहीं पता,
नहीं पता है उनको कि क्या चल रहा है, दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है उनको नहीं पता है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, उनके पास रहने खाने के लिए पानी तक की सुविधा नहीं है, लेकिन तुमको एक अच्छा बैकग्राउंड मिला है, तुम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो वो तुम बेखबर हो उन चीजों से, है ना। तो उसका ये जो कॉन्सेप्ट था समना सर का, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्यों ये जरूरी है, डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। तो उसके बाद से मैंने भी फिर काम करना शुरू कर दिया था। तो सेकेंड ईयर में जब मैं था तो जो स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो भी एकदम एक्सक्लूडेड फील कर रहे थे वहाँ पे। हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गार्डनर्स, वो क्योंकि हम जो लोग हैं वो उन लोगों के साथ डील नहीं करते, हम उनको सर्वेंट ट्रीट करते हैं, एज ए सर्वेंट ट्रीट करते हैं, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट नहीं करते हैं। हमारे घर पे भी आए हम उनको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट नहीं करते हैं, या एज ए ह्यूमन बींग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे, तुम ये करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, तुमको हटा दिया जाएगा, दूसरे को लाया जाएगा। तो हमारा एक इनिशिएटिव ये था कि हम लोगों ने फिर उन लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। हमने एक लीगल एड सेल खोला था, अभय ने भी उसमें हेल्प किया था हमारा। तो लीगल एड सर्विसेज करके हमने अलग से आईडीआईए में सेल बनाया। तो उसमें फिर हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज शुरू किया हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ। फिर उन लोगों के साथ हमने बातचीत की तो पता चला कि उनके मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं हाउसकीपिंग स्टाफ को, सिक्योरिटी गार्ड के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, हाउसकीपिंग स्टाफ को मारा जा रहा है ना, जो गार्डनर्स हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, उनको पैसे नहीं मिलते समय पे, जो सुपरवाइजर और इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ एक्सप्लोइटेशन करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जानने को मतलब मिली जब उनसे बातचीत शुरू हुई। तो
ये सब आइडिया में ही दिखाई दिया, मतलब
बाकी कोई इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा था। जब से हमने लीगल एड सेल इनिशिएट किया, मैं और अभय ने मिलके और कुछ लोग और लोगों ने मिलके, तो उसके बाद हमने ये शुरू किया। जब उन लोगों के साथ हमने एंगेजमेंट शुरू किया तब ये इश्यूज मिल गए, क्योंकि जब कोई बात ही नहीं करेगा तो कोई ऐसा शेयर नहीं करेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, ट्रस्ट नहीं है उनके साथ, है ना। तो उसके बाद फिर मिनिमम वेजेस का एक इश्यू था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक इश्यू
था। आईडिया में ही काम करते थे,
नहीं हम लोग थे वॉलंटियर आईडीआईए के साथ काम कर रहे थे, और जो हाउसकीपिंग स्टाफ थे यूनिवर्सिटी में जो काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गार्डनर्स, ये सब काम कर रहे थे ना। तो हम लोगों ने उनके साथ एंगेजमेंट शुरू किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि लीगल एड अगर हम देना चाहते हैं तो क्यों ना कॉलेज से शुरू करो, बाहर क्यों जाए, जब हमारे कॉलेज में स्थिति इतनी खराब है तो बाहर क्या दिखाएंगे।
और बढ़िया नीरा फाजली की वो लाइन है ना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी बच्चे को हंसाए, सही बात है ना, बहुत बड़ी बात।
तो वहां से हमने शुरू किया था ये, तो ये इश्यूज आए थे साथ में मिलके हमारे सामने, है ना। और तो फिर हम लोगों ने काम शुरू किया, देखा कि मतलब पता करते हैं, डीप में जाते हैं कि क्या इश्यूज था। हमने आरटीए वगैरह फाइल किया, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि मिनिमम वेज का बहुत बड़ा गैप है, उनको मिल नहीं रहा है। तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट किया था, फिर उसके बाद वो मिनिमम वेजेज उनका इंश्योर हो गया था। फिर हमने कंप्लेंट भी किया था जो हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है लोगों के साथ, तो फिर वो भी कम हो गया था उसके बाद। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के तौर पर हम लोगों ने उनके साथ सेलिब्रेट करना शुरू किया, छोटे छोटे फेस्टिवल शुरू किए थे सेलिब्रेट करना। तो हम लोगों ने क्या किया था कि वीकली एक मूवी सेशन रखते थे हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ, तो ऐसे सोशल इश्यूज से रिलेटेड मूवी जो है, जैसे मेंस्ट्रुएशन पे, या फिर ऐसी मूवीज जो हाइजीन पे बताती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, आदिवासियों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, तो जो लोकल लैंग्वेज में हम उनको दिखाते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हमारे ऊपर लाइक विश्वास करने लग गए थे वो लोग, और कोई भी इशू आता था तो हमारे पास आते थे वहाँ के, वो लोग बताते थे। तो वहीं से शुरू हुआ ये काम, है ना, कि ये चिंगारी जो वहां से चली थी,
यहाँ पे जो है
समना सर को देख के जो चिंगारी मिली थी वहां से हमने ये काम शुरू किया।
जो आज जेनिथ है एक तरह से वहां से वो शुरू हुई।
तो फिर धीरे धीरे हम लोगों और हमने और एक्टिविटीज मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। इसके साथ साथ कोविड में बहुत सारे इश्यूज आए थे उन लोगों को हाउसकीपिंग स्टाफ, क्योंकि कॉलेजेस तो बंद थे, उनको पेड लीव तो दे दिया लेकिन पैसे नहीं दिए थे, पेड लीव के नाम पे कुछ दिया नहीं था। तो फिर हम लोगों ने फंड रेज किया था उन लोगों के लिए, 3-4 लाख रुपए हम लोगों ने इकट्ठे किए थे क्राउड फंडिंग के जरिए, और फिर उन लोगों को राशन वगैरह दिया था।
लास्ट टाइम कब
शमनाश यार लास्ट टाइम
इन पर्सन मतलब ऐसे मुलाकात या फिर मैसेज क्या था
लास्ट? मैंने एक मैसेज भेजा था समनाथ को, मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की थी फोर्थ थर्ड ईयर के एंड में, जब एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके साथ मिला था समनाथ से,
2018
में मिला था, 2018 में लास्ट बार मिला था समनाथ से। फिर उसके बाद एक मैसेज भेजा था मैंने, इंटर्नशिप की थी मैंने, जब वो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप किया था जैनित में।
हाँ,
जैनित में इंटर्नशिप किया था, और जैनित में इंटर्नशिप करने के बाद मैंने जैनित का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने समनाथ को बोला।
ये कब की बात है? 2018 में,
2018 के लाइक एंड की बात है शायद।
समनाथ को व्हाट्सएप भेजा था या
व्हाट्सएप भेजा था अभी वो मेरा फोन वो हो गया, डिलीट सारा डेटा गया, खराब हो गया था, मैंने सेव करके रखा था वो।
अच्छा,
हां वो मैसेज तो समनाथ ने, फिर
क्या था उस मैसेज में?
समनाथ ने रिप्लाई किया तो उनका तो एक वर्ड तो जो वो था वो परमानेंट था, मार्वेलस।
अच्छा,
हाँ मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो या कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो मार्वेलस वर्ड तो यूज करेंगे ही करेंगे। या मैवरिक जो था वहां से उन्होंने वो चैंप्स जो आपने पढ़ा होगा चैंप्स के बारे में, चैंप्स मॉड्यूल के बारे में, तो मार्वेलस तो वो बोलते ही थे, टेरिफिक टेरिफिक तो वो बोला। फिर बोला कि राजू गुड टू नो कि तुम्हारी इंटर्नशिप जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, आई विल पर्सनली रिकमेंड स्कॉलर्स टू गो देयर एंड इंटर्न, यहाँ पे इंटर्न करो। तो वो लास्ट कॉन्वर्सेशन था मेरा, और उसके फिर 10-15 दिन बाद न्यूज आती है कि समनाथ का एक्सीडेंट हो गया
है। मतलब ये जाहिर सी बात है काफी इमोशनल बात है, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे ये बता सकते हो पहली बार तुम्हें कैसे पता चला कि ही इज नो मोर, और पहले थॉट्स क्या आए तुम्हारे मन में जब तुम कैसे पता चला?
हाँ बता रहा हूँ, तो रूम में मैं बैठा था, शाम का समय था अराउंड 5 है ना, मैं बैठा था और मैं ऐसे ही लाइव लॉ कर रहा था, लेकिन मेरे मतलब कोई आईडीए का एक सेंट्रल ग्रुप है, सेंट्रल ग्रुप है वहाँ पे, थोड़ा
व्हाट्सएप
ग्रुप है, तो वहाँ पे किसी ने ये इन्फॉर्मेशन डाली और एकदम से डिलीट कर दिया, और मैंने वो देख लिया है ना।
अच्छा,
हाँ मैंने वो देख लिया, तुरंत देख लिया था मैंने, और मेरे को पता चल गया ये, तो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया इंटरनेट पे। तो उसके थोड़ी देर बाद में अदीबा एक डायरेक्टर है वो बेंगलोर में है अभी, तो उसका मैसेज आया था कि उसको पता चल गया कि मैंने देख लिया मैसेज।
अच्छा,
शी कॉल्ड मी कि डोंट शेयर दिस, ये अभी कंफर्म नहीं है, और फिर थोड़ी देर बाद में शायद लाइव डॉप पे आ गया था कि एक्सप्लेनेशन आ गया। So I was crying really. I cried for 2 hours that ना शाम के समय।
कहाँ पे थे?
मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में बैठा था।
कॉलेज ये उड़ीसा
में? एनएनयू उड़ीसा में, हॉस्टल में था, शाम के समय था। I was preparing to go, मतलब खेलने के लिए जाने का, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए रवाना हो ही रहा था उसी समय, और खबर आई थी, और उस समय लाइक नथिंग केम टू माई माइंड, आई जस्ट लाइड आउट, सो गया था ऐसे, रो रहा था मैं। फिर 3-4 फ्रेंड्स आ गए थे, उनको भी पता चल गया था, फिर क्योंकि लाइव लॉ पे तो लोग पढ़ लेते हैं, तो फिर वो आए थे, बैठे थे, फिर बाकी सारे स्कॉलर्स फ्रेंड्स सब आ गए थे उसके बाद। फिर क्या मतलब क्या ही कर सकते उसके बाद, तो कोई
नहीं,
तो फ्रेंड्स आए बैठे रहे, रात मतलब करीब 10-11-12 बज गए थे बैठे बैठे। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने वो श्रद्धांजलि दी थी समनाथ को कॉलेज में, एक फोटो लगाए थे, माला वगैरह चढ़ाया, उनको याद किया था, उनके साथ जो मेमोरी थी वो शेयर किया। तो वहीं से जो चिंगारी जली थी उसके बाद, मतलब एक्चुअली में मैं जब समनाथ ने रिकमेंड किया था कि लॉ फर्म में एक बार इंटर्नशिप करके देखो, तो मैंने किया था, और लाइक कल्चर जानने की कोशिश की थी, तो लॉ फर्म में तो मन मेरा पहले से ही नहीं था कि लॉ फर्म में नहीं जाना है मेरे को। फिर मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मेरे को बस लॉयर ही बनना है, ह्यूमन राइट्स लॉयर बनना है, और काम करना है समाज के लिए, जिनको हेल्प की जरूरत है उनके लिए। तो वहीं से शुरू हुआ। फिर CSJ आपको पता होगा, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस,
मैं सुना है।
सेंटर फॉर सोशल जस्टिस अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो भी मतलब समनाथ, मतलब जो नूपुर है वो समनाथ की जूनियर है शायद, नूपुर जो चलाती है, जो
ठीक है, इससे भी बात करना चाहिए मतलब आपको।
Can talk like इतनी क्लोज नहीं,
इतनी क्लोज नहीं,
बट अर्णव इज
अर्णव से मैं लोगों से
रियली क्लोज है।
तो यहाँ आप
उसके बाद मैंने CSA में YPPLE फेलो जो सपोर्ट करते हैं, जो यंग लीडर्स हैं, यंग स्टूडेंट हैं, वो अगर समाज सेवा का काम करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करना चाहते हैं, तो उनको एक फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं YPPLE। तो मैंने कहा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ से, थोड़ा अप्लाई कर देते हैं। वहां पे अप्लाई किया, तो नूपुर और अभय काफी क्लोज है, है ना। तो नूपुर ने मेरे को बोला था, नूपुर भी अवेयर थी कि समनाथ ने अभय को सपोर्ट किया है, है ना। तो उसने मेरे को बोला कि तुम अभय के साथ काम करो एक साल के लिए। तो YPPLE फेलो में फेलोशिप में मैं सेलेक्ट हो गया, और फिर मेरे को इस तरह डायरेक्ट कर दिया कि जैनित में आप काम करो। तो उसके बाद से मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ।
यहाँ पे जितना भी काम किया है, दो तीन साल के ऊपर हो गया
ना? नहीं, अभी एक साल, एक साल हुआ। अभी यहाँ पे आए हुआ, क्योंकि अभी 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ।
हाँ, 2021 ग्रेजुएट। तो यहाँ पे एक साल में जो भी देखा, उसमें कभी कोई कुछ ऐसा हुआ जब लगा कि हाँ मैं इसीलिए ये काम कर रहा, होता ना इम्पैक्ट, क्या एक दो ऐसी चीजें कुछ बताओ।
एक्चुअली मैं इसको रिलेट करूँगा, जब मैं बच्चा था तो स्कूल में जाते थे, तो हम लोगों को दलित हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोगों को पानी हाथ से नहीं पीने दिया जाता था, हमको पानी पिलाने के लिए वो ऊपर से पोर करते थे, ऐसे अलग से बिठाते थे, ऐसे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है स्कूल में हमारे साथ, है ना। और जब मिड डे मील होता था तो हमको अलग से बिठाया जाता था, खाना ऐसे ऊपर से दिया जाता था, तो वो सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं। मेरे पापा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो मैं कभी कभी उनके साथ हेल्पर के तौर पे भी चला जाता था। तो जब खाना वगैरह लंच होता था पापा का, तो साथ में खाते थे, तो जो जिनके साथ काम करते थे अपर कास्ट के लोग थे, तो वो भी खाना,
तो वो नजर आता था।
हाँ, मतलब वो हमारे आसपास नहीं आते थे, रोटी देते थे या चपाती देते थे, तो ऊपर से ऐसे फेंकते थे, पानी भी ऊपर से वो पोर करते थे। तो ये सारी, तो शुरू से ही था कि ये इश्यूज हैं सोसाइटी में, तो इन पे काम करना है। तो दलित राइट्स पे तो शुरू से ही काम करने का मन था, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमने फेस किया था बहुत ही ट्रॉमेटिक था उस समय का, वो एक था शुरू से वहाँ पे कि काम करना है। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जो आदिवासी गाँव में हम जाते हैं, उनकी कंडीशंस देखते हैं, तो ऐसा पता चल रहा है कि यार इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से एंगेजमेंट करने की जरूरत, क्योंकि इन लोगों के साथ जिस तरीके से
महसूस कर सकते हो मुझे
एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ये फील किया है ना, एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने, ये सारा हमारे साथ हुआ है, तो उससे रिलेट करके कि हाँ इनके साथ एंगेजमेंट करने की जरूरत है, काम करने की।
कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जो बता रहे थे ना, तो क्यों ये सोशल जो डिवाइड है लॉ स्कूल्स में
जी,
वो क्यों हटना चाहिए, क्योंकि अब तुम ऐसे बैकग्राउंड से आके, तो जब तुम उनकी मदद कर रहा है तो तुम समझ रहे हो उनका दर्द, समझ रहे हो।
तो अभी एक दलित यहाँ पे वाल्मीकि समाज की लड़की है, उनके पिताजी स्वीपर है, यहाँ पे काम करते हैं, उनकी लड़की को हम ट्रेन कर रहे हैं क्लैट के लिए।
अच्छा,
हमारे यहाँ पे ऑफिस में आती है, वो डेली आती है क्लैट पढ़ने के लिए, क्लैट अभी उसकी दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आ रही। तो हम लोग
उसका नाम है, उसका
उसका नाम है आर्ची, ए डबल ए आर सी एच आई, आर्ची
डबल ए
आर सी एच आई, आर्ची
सी एच
आई,
आर्ची
आर्ची।
अच्छा,
तो वो उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, उसका भी लॉ करने का मन है, क्योंकि
क्लैट बोलते हैं उसको, सी एल ए डी
क्लैट,
क्लैट
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट।
अच्छा ठीक है, अच्छा वो तुम लोग उसको करवा, मतलब
हाँ, तो आईडिया ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा था, क्लैट करके फिर लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था। जैसे मैंने क्लैट लिया था ना, मेरे को एनएलयू ओडिशा मिला फाइनली, तो ये हुआ।
तो इनसे इन सब चीजों से लगता है कि
हाँ, लगता है कि हमको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है लिट लॉ स्कूल्स में, है लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा,
वो नजर ही नहीं
आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी नहीं है। कोई भी लॉ स्कूल में चले जाओ
नहीं दिखता,
और रीजनल में जाओगे जो रीजनल लॉ कॉलेज है उसमें तो क्लासेज ही नहीं होती है, रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही छोड़ो, टीचर भी नहीं आते पढ़ा।
लेकिन एक चीज बताओ, जब एनएलयू उड़ीसा में थे ठीक है, वॉलंटियर्स थे जो मदद कर रहे थे कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन दिक्कतें तो हुई होंगी फिर,
बहुत सारी
हुई ना।
इंग्लिश वाज वन ऑफ देम,
इंग्लिश सबसे बड़ा बैरियर,
सबसे बड़ा बैरियर था, उसमें जाते हैं जो एलिट इंस्टीट्यूशन है उसमें जाते हैं तो वी फील रियली शाय, है ना, कि हम किस तरीके से बात करें उनसे, क्या बात करें उनसे,
बात कर रहे हैं बड़े बड़े फेलोज हैं, तुम इतना बढ़िया से हिंदी इंग्लिश दोनों बात कर रहे हो
किस तरह। अब तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया, चीजों को जानने लग गए,
लेकिन वो बैरियर बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा बैरियर है। इसकी वजह से लोग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, या क्लासरूम डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बंदा साई फील करता है वहाँ पे, टीचर से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो फियर रहता है कि हाँ किस तरीके से हमको जज किया जाएगा, है ना, कि ऐसा ना हो कि हमको भी कहीं इसी तरीके का एक एलिगेशन लगा दिया जाए कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, दलित हो, आदिवासी हो।
ये डर बहुत अंदर घुसा
है, डर रहता है, वो एक ट्रॉमा रहता है,
क्योंकि
अप्रिशिएशन से ऐसा रहता
है, बैकग्राउंड में एकदम बनता है,
क्योंकि शुरू से हमको सप्रेस करके रखा है, दबाया के रखा है, तो वो शुरू से लेके अंत तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने रहता है। तो जो क्लासरूम डिस्कशन है उसमें भी हम ऐसा, फर्स्ट सेकंड ईयर में तो मैं एकदम साय था, पीछे बैठता था सबसे, कुछ भी नहीं आता था, कुछ बोलता तक नहीं था। एक बार तो ऐसा हुआ कि टीचर ने एक सवाल पूछा और मेरे ऊपर ही पॉइंट आउट करके बोला कि तुम जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
अच्छा, ये
हाँ, तो मतलब वो एक ऊपर से एक और प्रेशर आ जाता है उस समय, है ना, और इंग्लिश में बोलना होता है वहाँ पे, तो वो मतलब तो वो तीन चार लेयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक साथ आ जाते हैं।
तो जब जब कहते थे तुम्हारा दलित बैकग्राउंड है, एग्जैक्टली क्या, कैसे डिफाइन करते हो कास्ट को?
एससी कैटेगरी,
एससी ही बोलते हैं।
हाँ, मतलब मेघवाल जो होता है, मेघवाल MEGHWAL, हाँ, मेघवाल,
ठीक है।
तो वो दलित कम्युनिटी है वहाँ पे, और राजस्थान में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, मूंछें रंगने पे मारपीट कर दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मारपीट, शादी के समय घोड़ी पे चढ़ने पे मारपीट कर दिया जाता है, मंदिर में घुस जाता है तो मारपीट किया जाता है, नंगा करके लाठे से पीटा जाता है, तो ये सारे इंसिडेंट देखे हैं ऐसे, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा फील होता है कि रिप्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है, जब उसको सम्राट के आइडिया के साथ, हम आइडिया के साथ उसको पढ़ते हैं, तब फील होता है कि ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस, उसके लिए जो आइडिया के लिए जो काम कर रहा है उनके खुद के लिए उसमें कुछ नहीं है, है ना, वो सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वो आइडिया वहां से आया, फिर हमने जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ मिला के पढ़ते हैं, तब फील होता है कि वाई शुड आई वर्क फॉर द कम्युनिटी, तो इसलिए ये रीजन है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इनके साथ, जैनित के साथ।
क्रांतिकारी है
मैं मॉडरेट हूँ, इससे मिलके आपको ये लगेगा।